ओम शांति। कहते हैं अंकुर जब साधना करता है तो बीज बनता है, बीज जब आराधना करता है तो पुष्प बनता है, और पुष्प जब नमन करता है तो फल या फूल बनता है, और यदि फल मीठा हो तो सबको अच्छा लगता है, और ऐसा ही फूल बनकर पुष्प बनकर जो सारे विश्व को सुगंधित कर रही हैं हमारी आदरणीय दीदी शैलजा दीदी जी। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे, एक हाथ की ताली का। दीदी पिछले 41 सालों से ज्ञान में है और 40 सालों से समर्पित होकर एक दिए की भांति अलौकिक मार्गदर्शन हम सभी का कर रहे हैं। भोपाल जोन से हैं और छतरपुर सेवा केंद्र की इंचार्ज हैं, और सोशल विंग हमारे ब्रह्मा कुमारी के 18 विंग्स बने हुए हैं, उसमें एक सोशल विंग है जिसमें समाज सेवियों की सेवा की जाती है, उसके जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसे अलौकिक पुष्प की सुगंधी ज्ञान रत्नों से हम भरपूर होंगे आदरणीय शैलजा दीदी जी।
ओम शांति। संगम युग पर प्यारा बाबा, हम सभी आत्माओं को हर प्रकार से भरपूर करके संपूर्णता की स्थिति तक ले जा रहे हैं, और इसके लिए 77 वर्षों से बाबा हमारी बहुत प्यार से बहुत धैर्यता से पालना कर रहे हैं। प्रारंभ से लेकर के हम बाबा की मुरलियों का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है बाबा ने कितने क्रम से, कितने तरीके से धीरे धीरे हम बच्चों को ज्ञान सागर के ज्ञान की गहराई तक पहुंचा दिया है। बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि समय के साथ साथ मैं तुम बच्चों को ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें सुनाता जाऊंगा। शुरुआत की स्टेज में बाबा ने हमको अलग अलग प्रतिवर्ष अलग अलग लक्ष्य दिया पुरुषार्थ के लिए, लेकिन जैसे समय की सूचना मिल रही है बाबा की मुरलियों से हम अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा ने जो ज्ञान को इतना विस्तृत रूप दिया। बाबा कहते ज्ञान सागर का पूरा ही ज्ञान तुम चिड़ियाओं को, तुम आत्माओं को थप कर लेना है, समा लेना है, जो बाबा समान ज्ञान का सागर बनना है। जैसे बाबा के पास संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा संपूर्ण ज्ञान हमारी बुद्धि में, हमारी धारणाओं में आ जाए। बाबा की शब्दों में हम कहें तो हमें बाबा समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है, और उसके लिए बाबा ने हमको बहुत डिटेल में हर एक बात स्पष्ट करके समझाई। लेकिन समय के इशारे प्रमाण अब बाबा हम बच्चों को मूल बात, जो सार की बात है, जो आवश्यक है समय के हिसाब से, इस सीजन के बाबा के महावाक्यों में वो इशारे हम सब सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिसमें बाबा ने जो विशेष बात कही है कि अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, अपने सेवा साथियों को भी निर्विघ्न बनाना है, और जो हमारा सेवा स्थल है, चाहे हम अलौकिक रूप से सेवाएं करते हैं, सेवा केंद्र है, या लौकिक कारोबार का भी हमारा कार्यस्थल है, उसे भी हमें निर्विघ्न बनाना है। स्वयं की स्थिति को निर्विघ्न बनाना, साथियों को निर्विघ्न बनाना, और सेवा स्थान को भी निर्विघ्न बनाना। समय के हिसाब से बाबा का ये विशेष इशारा हम सभी आत्माओं को मिल रहा है और बाबा ने निर्विघ्न स्थिति क्या है इसे भी सीजन की ही महावाक्यों में बहुत सरल तरीके से स्पष्ट किया। निर्विघ्न स्थिति का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में या हमारे इस पुरुषार्थी मार्ग में कोई विघ्न बाधाएं आएंगी ही नहीं, क्योंकि जब हम इतनी नीचाई से एकदम टॉप पर एकदम ऊंचाई पर भ्रष्टाचारी स्थिति से श्रेष्ठाचारी और पतित से पावन विकारी से निर्विकारी स्थिति तक पहुंच रहे हैं और वातावरण जो है कलयुग का है तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे ही, विघ्न बाधाएं तो आएंगे ही, लेकिन बाबा ने हमें स्पष्ट किया कि निर्विघ्न स्थिति माना विघ्न आए और चला जाए, विघ्न आए और चला जाए, ठहरे नहीं। हम उसको अपने पास ठहरा लेते हैं सोच सोच करके या उसके ऊपर उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे करके, तो किसी की भी खातिर करेंगे तो वो तो ठहर ही जाएगा। तो बाबा ने कहा माया को के भी हम बहुत पुराने ग्राहक हैं, पुराने साथी हैं, तो अगर हम इन विघ्नों को वैल्यू देंगे, इनको महत्व देंगे तो ये तो ठहर जाएंगे। लेकिन निर्विघ्न स्थिति माना विघ्न आए और चला जाए, तो ऐसी निर्विघ्न स्थिति हमें बनानी है। स्थिति माना आसन या कहे सीट, निर्विघ्न स्वरूप हमारा, हमारे ऐसा ये ऊंचा आसन हो, श्रेष्ठ आसन हो, ये सीट हमारी ऐसी सेट हो, तो किसी भी परिस्थिति में हम अपसेट नहीं हो सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, परेशान नहीं हो सकते हैं, और ऊंची स्थिति से ही हम विघ्न को सहज क्रॉस कर सकते हैं। बाबा के महावाक्यों में है कि जब हम चलते हैं तो जो भी छोटे छोटे से छोटा भी कोई बाधा आती है, विघ्न आता है, तो उसे क्रॉस करने में हमें टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारी उड़ती कला है, ऊंची स्थिति है, तो बहुत सारे विघ्न बाधाएं समस्याएं तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखेंगी और हम ऊपर से उड़ते हुए क्रॉस कर जाएंगे। तो हमारी ऊंची स्थिति विघ्नों को, समस्याओं को छोटा बना देती है। निश्चित है कि अगर हमारी स्थिति हलचल वाली है तो छोटे से छोटा विघ्न या समस्या बड़ी बन जाएगी। भक्ति मार्ग में जैसे उदाहरण है कि रावण के दरबार में जब अंगद गया तो पहले तो उसको वहां सीट नहीं मिली, तो हम सभी जानते हैं कि उसने अपना आसन खुद तैयार किया, अपनी पूंछ को इतना बड़ा किया और लपेट करके ऊंची स्थिति पर बैठ गया, और वहां पर बैठ करके फिर उसने दावा किया कि अगर कोई मेरे पैर को भी हिला देगा, अभी श्री राम से तो युद्ध की बात बाद में है, अगर कोई, मैं उनका एक साधारण सा दूत हूं, मेरे पैर को भी कोई हिला देगा तो हम सीता माता को यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। तो जब, ये तो सभी जानते हैं कि वो तो विजयी होकर लौटा, जब वो अपने दोस्तों के बीच में गया तो सबने उससे कहा कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, मान लो अगर कोई तुम्हारा पैर हिला देता तो, तुमने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि हम सीता माता को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। तो उसने उसी ऊंचाई से कहा मैंने तो एक बल एक भरोसे पर अपनी बात कह दी, सीता राम की है, अगर राम को अपनी सीता को सेफ करना है तो ये जिम्मेवारी उनकी है, मैंने तो एक बल एक भरोसे पर अपनी बात कह दी। तो कितने विश्वास से, उस ऊंची स्थिति से, उस ऊंचे स्वमान से, उस ऊंचे निश्चय से इतनी बड़ी बात वो रावण के दरबार में बोल गया। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि भले हम किसी भी वातावरण में रह रहे हैं, समय चाहे कलयुग अंत का ही क्यों नहीं है, चारों तरफ माया का पंप है। इस समय पर तो पांचों ही तत्व, पांचों विकार, यहाँ तक कि हमारे अपने पुराने स्वभाव संस्कार भी विघ्न रूप बनेंगे। बाबा ने ही कहा कि सब एक साथ पार करेंगे, तो कितना भी बड़ा पेपर क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी स्थिति ऊंची है, उस ऊंचे स्वमान में हम स्थित हैं, एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय के आधार पर है, तो विजय हमारी निश्चित है। तो इसलिए स्थिति को इतना ऊंचा बनाना, निश्चय को इतना मजबूत बनाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। कल भी हमने आदरणीय जयंती बहन जी की क्लास में सुना कि स्थिति हमारी प्रॉपर्टी है, स्थिति हमारी जिम्मेवारी है, हमारी स्थिति का रिमोट दूसरे के हाथ में ना हो, दूसरे की व्यवहार से, दूसरों की बातों से प्रभावित होकर, दूसरे की किसी क्रियाकलाप से हमारी स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, नहीं। स्थिति मेरी है और स्थिति को इतना श्रेष्ठ ऊंचा बनाना ये मेरी जिम्मेवारी है। और अंत में जब माया के सभी रूपों का एक साथ वार होगा, उस समय पर हमारी ये शक्तिशाली स्थिति, ऊंची स्थिति ही हमें विजयी बना सकेगी। और अंत के समय जो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा, तो हमारी विजय होना माना बाबा की प्रत्यक्षता होना। विघ्न बाधाओं का आधार लेकर के अगर हम कमजोर पड़ते हैं, फेल होते हैं, तो लोगों के मुख से भी यही आवाज निकलती है कि ये तो भगवान की पढ़ाई पढ़ते थे, ये तो भगवान के घर पर जाते थे, ये तो बहुत निश्चय से कहते थे कि भगवान धरा पर आ चुके हैं, भगवान हमारा साथी है, फिर क्या हो गया। तो हमारी श्रेष्ठ स्थिति जो हमें विजयी बनाएगी, उसी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा की प्रत्यक्षता के लिए भी मुझे अपनी स्थिति को ऐसा निर्विघ्न, ऐसा श्रेष्ठ बना करके रखना है। कई बार हम देखते हैं कि एक जैसे हालात होते हैं, एक जैसी समस्या होती है, एक जैसी बात होती है, लेकिन उस एक जैसे हालात में कोई तो अपनी स्थिति के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर, अपने उमंग उत्साह के आधार पर कहते रिकॉर्ड तोड़ देता है, लोग उसको वाहवाही करते हैं, उसकी कमाल है, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने तो कमाल का काम किया। तो कोई तो रिकॉर्ड तोड़ देता है और कोई दम तोड़ देता है। कारण क्या होता है? कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। कारण क्या होता है? उसके पीछे सबसे मूल कारण होता है हमारा अपना कॉन्फिडेंस, हमारा अपना आत्मविश्वास। कई बार हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि किस प्रकार से एक साइंटिस्ट, जिनके लिए कहते हैं उनके जो पूरी तरह विकलांग है, उनके हाथ भी मतलब काम नहीं करते हैं, पैरों से भी वो व्हील चेयर पर ही चलते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई वरी नहीं उनके जीवन में, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। वो कहते हैं मेरे अंदर, मेरे भले हाथ पांव ये काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास, मेरी आशा वो खत्म नहीं हुई है। तो जब व्यक्ति के पास में ये शक्ति होती है, आत्मविश्वास होता है, तो वो कैसी भी परिस्थिति में सहज पास कर लेता है। और जब हमारा अपना ही विश्वास कमजोर हो जाता है, तो हमें चारों तरफ भी वैसा ही वातावरण मिलता है। कहते हमारे अंदर जो होता है, बाहरी साधन उसी को बढ़ाते हैं। हमारे अंदर अगर उदासी है, निराशा है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, कमजोर संकल्प है, हीनता का भाव है, व्यर्थ सोचने का संस्कार है, अगर हमारे अंदर ये सब नेगेटिविटी है, तो बाह्य साधन बाह्य परिस्थितियां भी ऐसे ही मिलेंगी जो उनको ही बढ़ाएगी। और अगर हमारे अंदर खुशी है, उमंग है, उत्साह है, पॉजिटिविटी है, हर बात को हम सकारात्मक रूप में देखते हैं, हर बात के हम उजले पक्ष को देखते हैं, पॉजिटिव पक्ष को हम देखते हैं, तो हमारे चारों तरफ जो भी साधन, जो भी व्यक्ति, जो भी वातावरण, जो भी मिलता है वो हमारी उसी बात को बढ़ाता है। तो जिस तरीके की प्रवृत्ति हमारी है, उसी तरीके के साधन, उसी मानसिकता के लोग हमें मिलते हैं। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सुंदर मंत्र दिया है कि हर बात में हम नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का लक्ष्य रखें। विघ्न आने का जो मुख्य कारण होता है, हम इसी बात को भूल जाते। बाबा ने हमको बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। बाबा कहते हैं एक छोटी सी अगरबत्ती है, कैसे भी खराब वायुमंडल के आगे वो अपनी कमजोरी का रोना नहीं रोती है कि मैं अकेली, मैं छोटी दुबली पतली, मैं कैसे इतने बड़े वायुमंडल को चेंज करूंगी। नहीं, वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है। गुलाब के पौधे को कितनी बदबू वाली खाद देते हैं, लेकिन उसमें से वो खुशबूदार तत्वों को खींच लेता है। तो जो हमारी रचना है उसके पास भी ये गुण है। ऐसे ही कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति हो, लेकिन उसमें से भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लेना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके उसमें से भी अच्छाई को ढूंढ लेना, ऐसी बातों को ढूंढ लेना जो हमारी उमंग को, उत्साह को, खुशी को बढ़ाए। दुनिया का एक उदाहरण है, विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे और वहां पर उनका बहुत नामाचार हो रहा था, बहुत महिमा हो रही थी चारों तरफ, तो कुछ लोगों को वो रास नहीं आ रही थी। तो एक बार एक चर्च के कुछ लोगों ने विचार किया कि इनको किसी तरीके से, हमें ये इंडिया से आया है और एक साधारण सा फकीर है और इतना लोकप्रिय होता जा रहा है, हमें इसे डाउन करना है। तो उन्होंने उसको अपने यहाँ पर एक लाइब्रेरी के उद्घाटन के नाम से बुलाया। जब विवेकानंद जी वहां पहुंचे चर्च में, तो उन्होंने देखा बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, एक के ऊपर एक काफी रखी हुई थी, और बाइबल सबसे ऊपर थी और गीता सबसे नीचे रखा था। तो उनकी भावना ये थी, उनका इंटेंशन ये था कि हिंदू धर्म एकदम नीचे, हमारा धर्म सबसे ऊपर, कुछ ऐसी सोच से उन्होंने ये सब किया। और विवेकानंद जी तो वैसे बहुत बुद्धिमान थे, वो तो सेकंड में समझ गए, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि आप अमेरिका वालों का दिल कितना बड़ा है, दिमाग भी कितना विशाल है, बृहद भाव से आप सोचते हैं। आपने देखी, आप क्रिश्चियन होते हुए भी आपने हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ को कितना मान दिया है, उसको आधार में रखा, फाउंडेशन में रखा है ना, नीचे रखा था ना सबसे, तो उन्होंने उसको इस रूप में लिया कि आपने उसको फाउंडेशन ऐसा करके उन्होंने नीचे से गीता को खिसकाया, तो ऊपर की किताबें तो गिरनी थी, तो कहा आपने उसे फाउंडेशन में रखा, अगर फाउंडेशन ही गिर जाएगा, हिल जाएगा, तो देखिए सब कुछ गिर जाएगा। तो उनकी भावना थी इन्हें नीचा दिखाना, लेकिन उन्होंने, विवेकानंद जी ने उस बात को भी कैसे संभाला, अपना स्वमान भी कायम रखा, अपने देश का, अपने ग्रंथ का भी स्वमान कायम रखा और उनका भी मान बढ़ाया और कहा कि आप, मतलब उनके भी दिल और दिमाग की विशालता की महिमा करके बोला। तो हर नेगेटिव परिस्थिति में से हम सकारात्मकता, हम पॉजिटिव बात ले सकते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी स्थिति बनाना है, हमें ऊंचा, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य अपनी स्थिति के ऊपर है, हमारा लक्ष्य बातों के ऊपर नहीं है। इन्होंने हमसे ऐसा बोला तो हमें इन्हें ऐसा जवाब देना, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो टिट फॉर टैट हमें भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करना है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है, पूरा लक्ष्य ध्यान इस बात पर है कि मुझे अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है। और मुझे स्थिति को ऊंचा उठाना, इसलिए मुझे क्या क्या करना है? तो पहली बात तो बाबा ने कहा कि ये जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, परिस्थिति से हम प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर विघ्नों का नाम लेकर के हम कहते हैं कि विघ्न ही ऐसा आया था, हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, कोई भी विघ्न आता है तो अनुभव कहता है कि विघ्नों के आने का सबसे मूल कारण है समझ की कमी, ज्ञान की कमी। इसी कारण से बाबा हमको कहते हैं, बच्चे तुम्हें मास्टर नॉलेजफुल बनना है। हर बात में, हर बात की नॉलेज बाबा ने बहुत स्पष्टता से और गहराई से हमें दी है। हर कर्म के आदि मध्य अंत को सोच समझ करके हमें कर्म करना है। कोई भी बात बोलनी है तो उस बात के आदि मध्य अंत को समझ करके हमें बोलना है। बाबा ने हमें पूरे इशारे दिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी समझ की कमी, ज्ञान की गहराई की कमी या ज्ञान के प्रयोग के अनुभव की कमी के कारण हम फेल हो जाते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते, बाबा ने हमें आठों शक्तियां दी है, लेकिन किस शक्ति का कब कहां कैसे प्रयोग करना है ये बुद्धि तो हमें चाहिए। इसके लिए तो हमारा बाबा के साथ बुद्धि का लाइन क्लियर हो, कनेक्शन सही हो, तो हमें समय पर टच हो कि किस समय पर हमें सामना करना है, किस समय पर हमें समा लेना है, किस समय पर हमें सहन करना है। शक्तियां तो हैं आठों, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है कि हम जहां जो करना चाहिए उसकी जगह दूसरी शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये भी नॉलेज की कमी कहें, अनुभव की कमी कहें, और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल की बातें होती हैं जिसमें समझ की कमी के कारण, अनुभव की कमी के कारण हम फेल हो जाते हैं। आज आदरणीय दादी जी क्लास करा रहे थे बहनों का, तो दादी जी ने एक बात इसमें खास ध्यान खिंचवाया था कि कई बार हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। शायद ये बात आज मुरली में भी आई थी कि कई बार हमारी समझ, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो ऐसे समय पर जो हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, उनसे हमें राय सलाह ले लेनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि हमको सही डिसीजन नहीं दे पा रही है और हमारा बड़ों से कनेक्शन सही है, बड़ों से संबंध हमारा सही है, तो हम सेकंड में बड़ों से इशारा लेके और उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा बड़ों के साथ संबंध सही नहीं है, स्वयं की भी डिसीजन पावर काम नहीं कर रही है, तभी विघ्न विघ्न बन जाता है और हम फेल होते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारी ज्ञान की गहराई और बड़ों के साथ संबंध हमारा अच्छा हो। तीसरी बात बाबा कहते हैं, कई बार बुद्धि में ये आ जाता है जब कोई बड़ा पेपर हमारे सामने आता है, अचानक का आता है, जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं होते या हम सोच भी नहीं सकते कि इस रूप में भी पेपर आ सकता है, तब अचानक तब मुख से निकलता है, समस्या ही इतनी बड़ी थी, बहुत बड़ा विघ्न था, बहुत बड़ी बात थी। हम भूल जाते हैं ना, कई बार डॉक्टर साहब अपनी क्लास में कहते, ये नहीं कहो कि समस्या बहुत बड़ी है, ये कहो हे समस्या मेरे पास बहुत बड़ा भगवान है, बहुत बड़ा बाबा है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। जब हम विघ्न को बड़ा कर लेते हैं तो हमारी ताकत तो अपने आप घट जाती है, लेकिन जब सर्वशक्तिवान को साथी बना लेते हैं तो उसकी ताकत हमारे साथ काम करती है। भक्ति में दिखाते कैसे जब रावण सीता जी को लेके जा रहा था और रास्ते में जटायु मिला और उसने देखा कि ये तो सीता जी को लेकर के जा रहा है, जटायु बूढ़ा था, उसकी शारीरिक शक्ति भी काफी क्षीण हो चली थी, लेकिन तो भी उसने साहस और हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने नहीं सोचा रावण इतना शक्ति संपन्न है, इतना मैं उसके आगे बहुत बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं नहीं जीत सकता हूँ, उसे ये पता था कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा वाली बात नहीं, लेकिन इतिहास में कोई ये नहीं कहेगा कि जब सीता जी को लेके जा रहे थे तो जटायु ने देखते हुए भी अनदेखा कर दिया या कमजोर पड़ गया या फेल हो गया। उसने अपनी पूरी भरसक शक्ति से संघर्ष किया और अपने नाम को अमर कर दिया। तो जब हम अपने अंदर वो हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं, वो तभी होता है जब हम विघ्न को बड़ा नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान बाबा को अपना साथी बना करके चलते हैं। विघ्नों की स्थिति में विघ्नों के ऊपर विजय पाने का सबसे सरल जो साधन है, सबसे सरल तरीका है, बिना परिश्रम वाला तरीका है, कहते हैं सर्विस विथ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ हम सेवा करें, अपने जीवन को हम खुशनुमा बनाएं। हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं कि जब जीवन में खुशी होती है, उमंग होता है, उल्लास होता है, तो बड़ी से बड़ी बात भी हमें बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब जीवन से खुशी गायब हो जाती है तो छोटी से छोटी समस्या भी हमको बड़ी लगती है। तो हम क्या ऐसी विधि अपनाएं जिससे जीवन में खुशी हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम दो चार बातें ध्यान पर लाएंगे। सबसे पहली बात, जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए हमेशा ये याद रखें कि संसार में कोई भी वस्तु बनी है, कोई भी चीज है, वो अपने लिए नहीं है, अपने आप के लिए नहीं बनी है, वह दूसरों के लिए बनी है। ये माइक है, ये अपने आप के लिए नहीं है, इसकी में जो भी पावर है, विशेषता है, गुण है, ये दूसरों की सेवा के लिए है। ये सोफा है, ये दूसरों को सुख देने के लिए बना हुआ है। कोई भी चीज बनी है वो दूसरों के लिए बनी है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ब्राह्मण माना, पढ़ना और पढ़ाना, मधुबन में आना, यहां से बादल भर करके जाना और जाकर अपने अपने स्थानों पर ज्ञान की बरसात करना। माना हमारा भी जो जीवन है, हम जो कुछ भी लेते हैं यज्ञ से, बाबा से, अपनी आदरणीय दादियों से, बड़े भाई बहनों से, जो भी पालना अनुभव हम लेते हैं वो देने के लिए लेते हैं, बांटने के लिए लेते हैं। और जो भाई बहने सेवा में बिजी रहते हैं, अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करते हैं जिससे वो सेवा के इंस्ट्रूमेंट बन सके, बाबा के सेवा के काम आ सके, उन भाई बहनों का अनुभव होगा कि सेवा से खुशी बहुत मिलती है, उमंग उत्साह। और सेवा में छोटी मोटी बातों का तो ध्यान ही नहीं जाता है। तो जीवन में खुशी बढ़ाने के लिए ये एक अटेंशन रखे कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो मुझे बांटना है, वो मुझे सेवा करनी है। बाबा पिछले कई वर्षों से इशारा दे रहे हैं, पिछले साल भी बाबा ने कहा था कि देखो आपके अपने आसपास भी देखो, पड़ोसी, कोई पड़ोसी तो नहीं रह गया जिसको बाबा का संदेश नहीं मिला सही रीति से। इस वर्ष भी बाबा ने कहा कोई स्थान न रहने पाए, एक एक आत्मा को बाबा ने सारे बैरियर्स भी जैसे इशारा दे दिया तोड़ने के लिए। भल कोई नजदीक का सेवा केंद्र है, उनके पास हैंड्स कम है, कोई बात में कमजोरी है और वो अपना एरिया पूरा नहीं कवर कर रहे हैं, आप उन्हें मदद दे करके, उनको भी साथी बनाकर आप उन्हें मदद दे करके उस एरिया को कवर करो। आप अपने आप को ऐसा समझते हो कि हमारा एरिया बहुत है और हम उसे नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप आसपास के भाई बहनों की मदद लो, क्या भी करो, लेकिन कोई भी ना रहे जो बाबा के परिचय से, बाबा के वर्षे से वंचित रह जाए। मतलब बाबा हम बच्चों को कितना इशारा देते, एक भी आत्मा लास्ट में उलाहना देने वाली ना रहे कि भगवान धरा पर आया, आपको पता चला लेकिन आपने हमें संदेश नहीं दिया। तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उन्हें बाबा का संदेश देना और जो कुछ हमने पाया है आज हम देखते हैं बाबा की सेवा की विधियां कितनी बदलती जा रही हैं। शुरू शुरू में जब हम लोग आए थे तो हम सोचते थे कि जो बाबा का बेसिक नॉलेज है, 7 दिन का कोर्स है, मुरली सुनाना है, तो यही सेवा है। और जो कोई इस ज्ञान को नहीं सुनता है, उसे कोर्स में निश्चय नहीं होता है, वो रेगुलर नहीं आता, तो हम उसको छोड़ देते थे। लेकिन समय के साथ सेवा का रूप बदलता गया, मैनेजमेंट के वैरायटी कोर्सेस निकले, और ये हुआ कि कोई अगर सीधा सीधा बाबा का ज्ञान नहीं सुनना चाहता है कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस इतना अधिक बढ़ चुका है जीवन में, सभी चाहते तनाव से मुक्ति हो, सभी जीवन में जो है जॉय ऑफ लाइफ कहे, जीवन की खुशी चाहते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग तो सब लेना चाहते हैं। और इस ट्रेनिंग के लिए वो आएंगे हमारी बात सुनने के लिए, इनडायरेक्ट वे में हम उन्हें बाबा का संदेश दे सकते हैं। अभी टीवी, पीस ऑफ माइंड, इन सब के माध्यम से हम देखते हैं कितने लोग हैं जो बाबा से बहुत नजदीक तक जुड़ गए हैं, भले वो सेवा केंद्र पर भी नहीं आते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड की जो क्लासेस हैं, शिवानी बहन जी का है, या बाप दादियों की क्लासेस हैं, या मुरली क्लास तक भी, या मेडिटेशन के प्रोग्राम भी निश्चित तौर पर अटेंड करते हैं। तो माना सेवा की ये जो वैरायटी विधियां बन रही हैं, ये वैरायटी विधियां इसी बात का प्रतीक है कि आत्माओं को किसी भी तरीके से भगवान का संदेश जरूर पहुंचाना है। तो जितना हम ये सेवा में बिजी रहते हैं उतना खुशी रहती है जीवन के अंदर। दूसरी बात, जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए हमेशा हम इस बात को ध्यान पर रखें कि दुनिया में कोई भी किसी चीज का मालिक नहीं है, यहां हम किसी के भी मालिक नहीं बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं। आज एक व्यक्ति होटल में भी अगर ठहरने जाता है, होटल के साधन हैं, टॉवेल है, टीवी है, टेलीफोन है, होटल में जो भी कुछ उसको साधन मिलते हैं वो सब उपयोग वो कर सकता है, उसके उपयोग के लिए कमरे में रखे जाते हैं, वो सबका उपयोग कर सकता है, लेकिन वो किसी भी चीज का मालिक नहीं होता, कोई भी चीज मालिक बनकर लेकर नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से बाबा भी कहते हैं हमको ट्रस्टी बन करके रहना है, किसी भी चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में, सेवा साथियों में, सेवा स्थान पर, सेवा के साधनों में, या लौकिक परिवार में भी अगर किसी से भी हमारा अटैचमेंट होता है, मेरापन आता है, तो ये मेरापन हमारी खुशी गायब करने का कारण बन जाता है। क्योंकि जब अटैचमेंट होता है हम उसको पाना चाहते हैं, सही गलत चाहे जिस विधि से हम उसको पाना चाहते हैं, और वहीं हमारी खुशी गायब हो जाती है। और तीसरी बात है कि जिसके अंदर जो क्वालिटी है, हम किसी की किसी से तुलना ना करें, हमारे अंदर जो क्वालिटी है या हमारे साथियों के, परिवार के सदस्यों के अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसे हम उसी रूप में ही एक्सेप्ट करें और यूज करें, उसका हम फायदा उठाएं। जैसे हम अपने हाथ की इन 5 उंगलियों को देखते हैं, ये 5 उंगलियां भी एक समान नहीं है। कहते एक बार इन 5 उंगलियों में आपस में झगड़ा हुआ और हर एक अपने आप को बड़ा कहने लगी, सबने अपनी अपनी दलील दी कि मैं इसलिए बड़ी हूं कि मेरे ऊपर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और गिरिधर कहलाए, मैं इसलिए बड़ी हूं कि जो भी शुभ कार्य होता है मेरे द्वारा होता है, तीसरे ने कहा मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए मैं हूं ही बड़ी, चौथी ने कहा मैं केवल यूं करूं तो भी सबका ध्यान भगवान की तरफ जाता है, और अंगूठे ने कहा कि मेरे बिना कोई किसी चीज का प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है, चाहे कितना भी शिक्षित हो लेकिन उसे अंगूठा जरूर लगाना होता है। तो सबने अपनी अपनी विशेषता बताई, तो देखिए 5ों की 5 विशेषताएं हैं, हम चाहें कि ये सब एक जैसी हो जाए, संभव नहीं है। हर एक की विशेषता को जानकर उसको उस विशेषता सहित हम यूज करें, ये हमारा बड़प्पन है और इसी में हमारी और हमारे साथियों की खुशी और उन्नति है। बाबा भी कहता है, बाबा के घर में वैरायटी प्रकार के भाई बहने हैं, हमारे लौकिक परिवार में भी विभिन्न स्वभाव संस्कार विशेषता वाले भाई बहने सदस्य हैं। हर एक की विशेषता को, हर एक के गुण को अगर हम स्वीकार करें और उसको सेवा में यूज करें तो हम खुद भी संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और हमारे साथियों को भी हम संतुष्ट रख सकते हैं और उन्हें भी खुश कर सकते हैं। तो इस कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं, कुछ चिंतन की बातें ऐसी हैं, अगर हम इनका अटेंशन रखें तो अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं और अपनी स्थिति को भी ऐसा ही सुंदर बना सकते हैं। तो इस वर्ष बाबा ने हम सभी बच्चों को ये विशेष जो लक्ष्य दिया है, स्थिति को निर्विघ्न बनाना है, अपने सेवा साथियों को भी हमें निर्विघ्न बनाना है और अपने सेवा के स्थान को भी हमें निर्विघ्न बना करके रखना है, क्योंकि ये स्थिति ही निर्विघ्न स्वरूप ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा कई बार महावाक्यों में कहते हैं कि अंत के समय पर आप देखेंगे कई पुराने पुराने भाई बहने भी कमजोर हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, उसका कारण स्थिति पर अटेंशन नहीं। तो इसीलिए जो हम बच्चों को बाबा ने ये एक गिफ्ट दी है, लास्ट सो फास्ट एंड फास्ट सो फर्स्ट आने की, तो इस लॉटरी का हम फायदा तभी उठा सकते हैं जब अपनी स्थिति को ऐसा सुंदर बनाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जो भी माताएं भाई आ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से अलौकिक वातावरण का लाभ तब ले सकेंगे जब हम मौन में रहें। आप लोगों की बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है, यदि आप शांति पूर्वक आएंगे तो वो व्यवस्था बनी रहेगी। दीदी स्वामी विवेकानंद जी के लिए बता रहे थे तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया। किसी ने एक भारतवासी से पूछा कि क्यों हमारा भारत बड़ा कमजोर देश है, क्या जब भी कुछ होता है तो आक्रमण भारत पर होता है। अंग्रेज आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत को दास बनाया। ईरानी आए, वो भी भारत में आए, उन्होंने भी भारत को दास बनाया। क्या हमारे भारत में वीरों की कमी है क्या, जो भारत को ही हमेशा दास बनाया जाता है? तो उस देश प्रेमी व्यक्ति ने कहा कि भारत में वीरों की कमी न थी, न है, न होगी, लेकिन कभी भी माँ अपने बच्चे पर आक्रमण नहीं करती है। किसी भी देश के लिए माँ शब्द संबोधित नहीं किया जाता, केवल भारत माँ कहा जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि स्वयं परम पिता इस धरा पर आता है। और जब ऐसी पालना हमें मिलती है तो ये आत्मा रूपी वीर जागृत हो जाता है। इसीलिए बहुत किसी ने खूब कहा है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, है सलामत घर गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। और बाबा हमें कहते हैं ये माया हमें पार होना सिखाएगी कि मुझे कैसे पार होना है। तो बहुत बहुत थैंक्स, जोरदार दीदी का ताली बजा के थैंक्स करेंगे। और अभी जो दीदी ने क्लास कराई उसका प्रैक्टिकल सबूत हम देंगे, क्योंकि अभी हम योग करेंगे, दादी जी आएंगे, थोड़ी सी व्यवस्था हम सबके सहयोग से बनेगी, इसलिए शांति बनाए रखेंगे। ओम शांति।